समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 बज चुके हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हर दिन की तरह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। हेलो एंड गुड इवनिंग अभिषेक।
हेलो जया। हेलो एंड गुड डे एवरीबॉडी। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को-होस्ट जया भारती एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीज ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कृषि क्षेत्र में नीति निर्माण और निर्णय लेने में महिलाओं की अधिक भूमिका पर बल दिया।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू रिलीज 22nd इंस्टॉलमेंट ऑफ द पीएम किसान स्कीम फ्रॉम गुवाहाटी इन असम टुमारो।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा उन्होंने हमेशा यह सुनिश्चित किया है कि सदन की कार्यवाही निष्पक्षता, अनुशासन और नियमों के अनुसार संचालित हो।
Government to conduct comprehensive probe into reported attack on former Jammu and Kashmir Chief Minister Farooq Abdullah.
ईरान के फारस खाड़ी में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाए जाने के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा।
एंड इन द स्विस ओपन बैडमिंटन किरण जॉर्ज टू टेक ऑन हांगकॉन्ग्स जेसन गुनावान इन द मेन्स सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल एट बाजेल टुनाइट। And now it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today, Jaya, we will talk about a global conference on the role of women in agri-food system 2026. Well, today we bring you an inspiring update from major conference focused on empowering women in agriculture. And across the world, and especially in countries like India, women are the backbone of agriculture. From sowing seeds to harvesting crops, women contribute significantly to food production. In many rural areas, women are actively involved in activities such as planting, weeding, irrigation, harvesting, and even managing livestock.
बिल्कुल अभिषेक, और महिलाओं की मेहनत लाखों परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक होती है। उनके योगदान के बावजूद महिला किसानों को अक्सर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए कृषि क्षेत्र में महिलाओं को पहचानना और सशक्त बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्हें शिक्षा, संसाधन और नेतृत्व के अवसर प्रदान करने से कृषि उत्पादकता और ग्रामीण आजीविका में काफी सुधार हो सकता है।
Yes, absolutely. And women are not just farmers, they are innovators, decision makers and community leaders. And when women are supported, entire farming communities benefit. Governments, organizations and communities are increasingly working to create programs that support women farmers and encourage the participation in agriculture leadership. And also, President Draupadi Murmu inaugurated the Global Conference on the Role of Women in Agri-Food System 2026 in New Delhi today. And the three-day conference is structured around a series of in-depth technical sessions. It will also host dedicated forums, including a Women Farmers Forum to address grassroots challenges and a youth forum to engage and network the next generation of agri-food leaders.
और कृषि खाद्य प्रणाली में महिलाओं की भूमिका पर वैश्विक सम्मेलन 2026 का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि कृषि, विशेषकर कृषि खाद्य प्रणालियों में कार्यरत महिलाओं के नेतृत्व को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने महिला नेतृत्व वाले विकास की रणनीति अपनाई है। उन्होंने यह भी कहा कि कृषि क्षेत्र में महिलाओं को नीति निर्माण, निर्णय लेने और नेतृत्व पदों पर भूमिका मिलनी ही चाहिए। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में सभी स्तरों पर महिलाओं की अधिक भागीदारी लैंगिक समानता को ध्यान में रखते हुए कृषि विकास को बढ़ावा देगी।
फसल को बोने, काटने, प्रसंस्करण करने और हाट बाजार में ले जाने जैसे सभी गतिविधियों में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मछली पालन, मधुमक्खी पालन, पशु पालन, वन्य उपजों के समुचित उपयोग तथा कृषि पर आधारित उद्यमों को चलाने जैसे अनेक क्षेत्रों में हमारी माताएं, बहनें और बेटियां अथक परिश्रम करती हैं। ये कृषि अर्थव्यवस्था को अमूल्य योगदान देते हैं।
Yes, sir. Jayan, let's also talk about what the president also had to talk on this. And President Moon expressed confidence that the participants of this global conference will find pathways for driving progress and achieving new heights.
For women farmers, AI offers new possibilities. Recently, inspired by the idea of the Government of India to use AI for taking care of livestock, Sarla Ben Af has been launched to take care of the health of the cattle by the world's largest milk cooperative, Omul. Women farmers are the strength behind the sustained success of Omul.
Yes, and the president noted that there is global consensus on giving equal importance to people, planet, prosperity, peace and partnership.
बिल्कुल अभिषेक, और राष्ट्रपति मुर्मू ने इससे पहले भी महिला दिवस पर कहा था कि भले ही सरकार कई कार्य कर रही है लगातार महिलाओं को समानता देने के लिए, लेकिन इस कटु सत्य को कहीं भी नकारा नहीं जा सकता कि अभी भी महिलाएं समान रूप से आगे नहीं बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं वे पीछे हैं। इसलिए आज के कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति ने सभी हितधारकों से आग्रह किया कि विचारों और कार्यों में लोगों के लैंगिक आयाम को विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि कृषि सहित गतिविधि के हर क्षेत्र में प्रभावी लैंगिक समावेशन से पृथ्वी अधिक संवेदनशील और सामंजस्यपूर्ण स्थान बन जाएगी।
I am sure that the participants in this global conference will find pathways for driving progress and attaining new heights. There is global consensus on giving equal importance to people, planet, prosperity, peace and partnerships. I will appeal to all the stakeholders that on the dimension of people, gender should be given special priority in thoughts and action. With effective gender inclusion in every sphere of activity, including agriculture, we will not only achieve the SDGs, but will also make the planet a much more sensitive and harmonious place.
Yes, Jaya, and let's also talk about what the president had to say on the issue of leadership. And President Murmu said it is important to encourage leadership among women who are engaged in agriculture, especially agri-food systems.
It is important to encourage leadership among women who are engaged in agriculture, especially agri-food system. India has chosen the strategy of women-led development. Women in agriculture sector should get a greater role in policy formulation, decision-making, and leadership positions. Larger participation in women at all levels in the sector will promote gender-inclusive agricultural growth. Women farmers should be helped in issues concerning formal and land title, technical knowledge, financial resources and other support system.
बिल्कुल, और महिला किसानों में नेतृत्व को प्रोत्साहित करने से सकारात्मक बदलाव आ सकता है। जब महिलाओं को नेतृत्व करने का अधिकार मिलता है तो वे नवोन्मेषी विचार साझा करती हैं, कृषि पद्धतियों में सुधार कर सकती हैं और टिकाऊ खाद्य उत्पादन को बढ़ावा दे सकती हैं। नेतृत्व के अवसर महिलाओं को स्वयं का प्रतिनिधित्व करने, महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने और जमीनी स्तर पर किसानों को लाभ पहुंचाने वाली कृषि नीतियों को आकार देने में मदद करने का भी अवसर प्रदान करते हैं।
Yes, and promoting women's leadership in agri-food systems is not only about equality, it's also about strengthening agriculture and ensuring food security for future generations. When women farmers are supported and given a voice, the entire agricultural community grows stronger.
इस अवसर पर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है और वे इसमें योगदान देती हैं। उन्होंने यह भी बताया कि ICAR की रणनीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जल्द ही एक लैंगिक मंच का शुभारंभ किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि यह मंच देश भर में कृषि अनुसंधान नेटवर्क में महिला केंद्रित अनुसंधान कार्यों को गति और दिशा प्रदान करेगा।
Yes, and to conclude our discussion on Global Conference on the Role of Women in Agri-Food System 2026, well, Jaya, by bringing together women farmers, young innovators and experts, the conference hopes to create stronger leadership and inclusive growth within the agri-food sector. And empowering women in agriculture means strengthening the entire food system and ensuring a more sustainable future.
बिल्कुल, और जब सरकार लगातार कोशिश कर रही है तो श्रोताओं, आइए कृषि क्षेत्र में महिलाओं की अविश्वसनीय योगदान की सराहना और समर्थन करना जारी रखें। वास्तव में कृषि में महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाना केवल समानता की बात नहीं है, बल्कि यह सुदृढ़ खाद्य प्रणालियों के निर्माण और सभी के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने की बात होती है। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास आज क्या कुछ खास है।
Yes, Jaya, and we start off with a story from Tiruchirappalli. And the National Institute of Technology and IT, situated at Tiruchirappalli, the central district of Tamil Nadu, has made a mark by turning legacy waste into sustainable paver blocks. And we have more on this from a correspondent.
The Trichy Institute, NIT, makes a profound mark by turning legacy waste into sustainable paver blocks that could tackle the growing challenge of municipal waste. The research at NIT Trichirappalli have developed eco-friendly paver blocks using legacy waste extracted from the dump yard. The project, led by researcher Professor Shri Ramesh, Department of Civil Engineering at NIT Trichy, was carried in collaboration with the Trichy City Corporation. The innovation called SLM blocks uses soil-like material, the finest fraction obtained during landfill biomining, as a partial replacement for conventional fine aggregates in paver block production. Researchers say the technology significantly reduces the leaching of toxins and provides sustainable reuse path for legacy waste. In Tamil Nadu, the Pollution Control Board has identified 143 dump yards, of which 7 have been reclaimed or capped while restoration work continues at the remaining sites. During biomining, legacy waste is segregated into different fractions, among which SLM accounts for nearly 53% of the total waste. Traditionally, this material has been disposed in low-lying areas due to limited reuse option. SLM has properties quite similar to conventional fine aggregates used in construction. Replacing 15% of fine aggregates with SLM provides optimal strength and performance in paver blocks. This offers a practical solution for managing legacy waste generated through biomining. The production will be scaled up, and the next step is to push this innovation towards commercial manufacturing so that municipalities can adopt it widely and convert the waste into a useful construction material. The SLM method is expected to create a turning point in future waste management and will pave way for a better and clean environment with emerging new technological innovations. Shanti Ramesh for Parikrama from Akashwani Trichirappalli.
और अब चलते हैं कोलकाता। राष्ट्रीय और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड ने उत्तरी बंगाल के छोटे चाय उत्पादकों के लिए कम ब्याज दर वाली ऋण योजना को मंजूरी दे दी है, जिससे लगभग 50,000 छोटे चाय बागान पहली बार संस्थागत वित्त पोषण के दायरे में आ गए हैं। अधिक जानकारी सुनते हैं हमारे संवाददाता से।
According to NABARD sources, individual small tea garden owners and growers operating under cooperatives will be eligible for loans of rupees 1.43 lakh each at an interest rate of 7%. If the borrower repays the full amount within 1 year, the interest rate will effectively be reduced to 4%. An additional loan of rupees 64,000 will be provided at the same rate. The scheme has been brought under NABARD's refinance process. Small tea growers of North Bengal had long sought access to institutional credit, but banks were unable to extend loans earlier as tea cultivation was not classified under agriculture for such financing. With NABARD's approval, loans will now be sanctioned upon submission of land ownership and identity documents. This move is a major boost for new plantations, irrigation, maintenance and overall development. Welcoming the decision, Rajat Roy Karji, president of the Jalpaiguri District Small Tea Growers Association, said the demand for low-interest loans had been pending for a long time. This initiative will significantly benefit marginal tea growers and strengthen cultivation. Shushmita Mondol, Akashbani, Kolkata.
And from Kolkata on to Guwahati, and in Assam, the first science city was inaugurated recently at Tepesia in Sonapur near Guwahati by Chief Minister Himanta Biswa Sarma. The facility aims to promote scientific awareness, innovation and curiosity among students. We have more from a correspondent.
To promote scientific awareness, innovation and curiosity among students, the Guwahati Science City was inaugurated recently. Assam government is calling it a landmark step for science education in the state. Developed jointly by the Assam government and the National Council of Science Museums, the facility was built at a cost of rupees 288.13 crore and spreads across 250 bighas of land. The Science City currently houses two galleries, Eureka and Space Odyssey, with two additional sections, Science Discovery and Science Park, expected to open soon. The Space Odyssey Gallery and Digital Planetarium will allow students to experience simulations of space travel, lunar missions, and Mars missions. Augmented and virtual reality technologies will also enable visitors to explore biodiversity hotspots such as Kaziranga National Park from within the facility. Government will organize educational visits to the Science City for high school students from across the state. Aminul Haq Zardar, Guwahati.
और अब गुजरात चलते हैं, जहां दांडी मार्च की शुरुआत पर कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आज 12 मार्च के दिन राष्ट्र दांडी कूच के स्वतंत्र सेनानियों को याद कर रहा है। अहमदाबाद को अपनी कर्मभूमि बनाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने आज ही के दिन 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू की थी। दांडी कूच की स्मृति में गुजरात में भी कई जगहों पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। सुनते हैं रिपोर्ट।
दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च और दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में किया गया ये अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी जी 79 सत्याग्रहियों के साथ अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से नवसारी के दांडी तक पहुंचे थे। उन्होंने 386 किलोमीटर की यह यात्रा 24 दिन में पूरी की थी। आज इसी ऐतिहासिक दांडी यात्रा के स्मृति दिवस के मौके पर पूरा देश स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। अहमदाबाद में भी महात्मा गांधी जी द्वारा स्थापित गुजरात विद्यापीठ के छात्रों ने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने के लिए एक पद यात्रा का आयोजन किया था। आइए सुनते हैं गुजरात विद्यापीठ के वाइस चांसलर हर्षद पटेल इस बारे में क्या कहते हैं।
आज उस दांडी स्मृति दिन के पर गुजरात विद्यापीठ द्वारा आयोजित 3.5 किलोमीटर की पदयात्रा साबरमती आश्रम से गुजरात विद्यापीठ तक जाएगी। जो बापू का संदेश पूरे विश्व को था, उस संदेश को आज तक भी जीवित रखने का काम और प्रजा जीवन में एक उत्साह, उमंग और नई ऊर्जा इस माध्यम से सबके मन में रहेगी, उसी शुभ आशय से गुजरात विद्यापीठ ने ये पदयात्रा का आयोजन किया।
परिक्रमा के लिए अहमदाबाद से मैं प्रवेश अडियेचा।
और अब आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी की आगामी कड़ी में हम श्री ब्रजलाल भट्ट से बातचीत करेंगे। श्री ब्रजलाल को जम्मू कश्मीर में सामाजिक कार्यों के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा।
भारत को विश्व गुरु ले जाने के लिए हमारे कश्मीर के यूथ का, चाहे किसी भी फेथ से हो, आगे आगे हमारा यूथ होगा। सारे नेशन को बताना चाहता हूँ, ये जो 5-6 हजार बच्चे विस्थापित समुदाय के वहाँ गए हैं, आई कीप टेलिंग देम यू आर द एम्बेसडर्स, वो इसलिए गए हैं कि उनको अपनी मातृभूमि की खुशबू ने लाया। यूनिवर्सल ब्रदरहुड विवेकानंद थॉट मिशन को लेके वहाँ काम करते हैं।
ये पॉडकास्ट आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा, जिसे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। पॉडकास्ट का पुनः प्रसारण कल सुबह 9:10 पर किया जाएगा। और अब चलते हैं खेल के मैदान और जानते हैं वहां की हलचल। बाजल में स्विस ओपन बैडमिंटन में किरण जॉर्ज आज रात पुरुष सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में हांगकांग की जेसन गुनावन से खेलेंगी। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में आज भारत के किरण जॉर्ज का मुकाबला हांगकांग के जेसन गुनावन से होगा। किरण ने कल सिंगापुर के पूर्व विश्व चैंपियन लोह किन यू को हराया।
And moving on to some business news, benchmark domestic equity indices extended the decline for the second consecutive session, closing around 1% down today. The Sensex shed 829 points to close at 76,034, while the Nifty dropped 228 points to settle at 23,639. Earlier markets opened sharply lower, tracking weak global cues, including rising crude oil prices and negative trends in the Asian markets. And for more updates about the market activities, tune into Akashvani's bilingual program, Market Mantra, at 6:30 p.m. this evening.
अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
12th March is the historic day when Gandhiji started his famous Dandi March in 1930. The 24-day march from March 12th to April 5th, 1930 marked the inauguration of the civil disobedience movement. The Dandi March was the most significant organized movement against the British Raj after the non-cooperation movement of the 1920s.
There was great excitement in Ahmedabad on the eve of the march. A large crowd gathered around Sabarmati Ashram and stayed through the night. Gandhiji gathered a group of 78 men.
There were 31 marchers from Gujarat, 13 from Maharashtra, and others from the United Provinces, Kerala, Punjab and Sindh, with Tamil Nadu, Andhra, Karnataka, Bengal, Bihar and Orissa sending one each. The diversity was social as well as geographical. From among the chosen marchers, there were many students and khadi workers. Several were the so-called untouchables, a few Muslims and one Christian.
They started out at 6:30 a.m. amidst a large group of people, cheering them all along with flowers and greetings. On their way, they stopped at a number of villages where Gandhi addressed large crowds. Gandhi reached Dandi village on April the 5th. Next day, on the 6th of April, he proceeded to the sea where he picked up lumps of natural salt lying in a small pit.
Man needs salt as he needs air and water. This salt comes from the Indian Ocean. Let every Indian claim it as his right.
While picking up the salt, Gandhiji said,
"With this, I'm shaking the foundations of the British Empire. My advice is that the workers should everywhere manufacture salt to make use of it and to instruct the villagers to do so."
The act was symbolic but was hugely covered by the press and was the beginning of several other acts of civil disobedience in other parts of India.
The Dandi March and its effect shook up the British government. We also remember the nationalist leader and the first chief minister of Maharashtra, Yashwant Rao Chavhan, who was born on the 12th of March 1913 in Sangli district of Maharashtra. As a schoolboy in Karad, he was fined for his participation in the non-cooperation movement. In 1932, he was sentenced to 18 months in prison for hoisting the Indian flag in Satara. During this period, he came in contact with Swami Ramanand Bharti, Dholappa Bhau Rao, Appa Sahib and Govind Kruparam.
During his college years, Chavhan was involved in many social activities and was closely associated with the Congress Party and its leaders such as Jawaharlal Nehru, Sardar Patel and Keshav Rao Jadde. Chavhan was one of the delegates at the Bombay session of the Indian National Congress in 1942 that gave the call for Quit India. He spent around 2 years in jail for his participation in the Quit India movement.
Post-independence, Yashwant Rao Chavhan was the first chief minister of the undivided state of Bombay. When the two new states of Gujarat and Maharashtra were created in 1960, Chavhan became the chief minister of the new state of Maharashtra. He took several steps to develop the state. He passed the Cooperative Societies Act and brought industries to backward areas, thus laying the stepping stones for a modern, industrialized state.
Yashwant Rao Chavhan held many important portfolios in the central government. He served as the Minister of Defence, Minister of Home Affairs, Minister of Finance and External Affairs Minister.
The elimination of foreign military bases from and preservation of peace in the Indian Ocean. This is not so for any reasons of expediency, but of principle and deep conviction. India's policy on the Indian Ocean is a logical and natural outcome of its policy of peaceful coexistence and non-alignment.
He also served as the 5th Deputy Prime Minister of India from July 1979 till January 1980.
Yashwant Rao Chavhan died of a heart attack on the 25th of November 1984 in Delhi.
Yes, and we are also remembering Robert Ludlum, who passed on this day 2001. He was an American author of 27 thriller novels, best known as the creator of Jason Bourne from the original The Bourne Trilogy series. The number of copies of his book in print is estimated between 300 million and 500 million. They have been published in 33 languages and 40 countries. Ludlum also published books under the pseudonym Jonathan Ryder and Michael Shepard.
आज जन्मदिन है भारत के एक प्रमुख कर्नाटक संगीत गायिका लक्ष्मी राजगोपालन का। लक्ष्मी का जन्म मुंबई के उपनगर माचुंगा में हुआ था। उन्होंने 3 वर्ष की आयु में अपनी माँ से संगीत सीखना शुरू किया था। बचपन में ही उन्होंने कई बड़ी प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की और 8 साल की उम्र में उन्हें भारत रत्न MS श्रुभोलक्ष्मी द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लक्ष्मी केचरी के दौरान किसी भी स्वर या संकेत को छिपाकर नहीं रखती, जो कर्नाटक संगीत के उनके गहन ज्ञान को दर्शाता है। उनकी आवाज राजसी और मधुर है। उनकी गायन शैली सेमंगुंडी, मामा, MS डेकीपे जैसे दिग्गज कर्नाटक गायकों की परंपराओं का अनुसरण करती है। उनकी आवाज भारतीय कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के लिए एकदम उपयुक्त है और अपने लंबे संगीत करियर में उन्होंने तमिल, हिंदी, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, मराठी और संस्कृत सहित 7 से अधिक भाषाओं में गायन किया है।
जैक कैरुएक वाज बोर्न ऑन दिस डे 1922। ही वाज एन अमेरिकन नॉवेलिस्ट एंड पोएट हु अलोंगसाइड विलियम एस बारस एंड एलन गिन्सबर्ग वाज अ पायनियर ऑफ द बीट जनरेशन। Of French-Canadian parentage, Kerouac was raised in a French-speaking home in Lowell, Massachusetts. He learned English at the age of 6 and spoke with a marked accent into his late teens. During World War II, he served as a United States merchant mariner. He completed his first novel at the time, which was published more than 40 years after his death. His first published book was The Town and the City in 1950, and he achieved widespread fame and notoriety with his second, On the Road, in 1957, and it made him a beat icon, and he went on to publish 12 more novels and numerous poetry volumes.
आज भारत की एक प्रसिद्ध गायिका और संगीतकार फाल्गुनी पाठक का जन्मदिन है, जिन्हें डांडिया क्वीन के नाम से भी जाना जाता है और जिनका नाम सुनते ही 90s की लड़कियों को अपना बचपन याद आ जाता है।
Falguni Pathak, and the theme of most of her songs is love, and she has performed in many shows in India and other countries, backed by a band called Tathaiya.
फाल्गुनी का अभी जो ये याद पिया कि आने लगी का ये पहला एल्बम था और 1998 में रिलीज हुआ था, जो काफी हिट रहा। उन्होंने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत 1987 में की थी और इसके अलावा उन्हें मैंने पायल है चनकाई, ओपी और मेरी चुनर उड़ उड़ जाए भी काफी प्रसिद्धि प्राप्त की।
Yes, and we are also remembering Shreya Ghoshal, who was born on this day in 1984. She's a playback singer, an occasional music composer, noted for a wide vocal range and versatility. She is one of the most prolific and influential singers of India.
और देवदास में उन्हें ब्रेक दिया गया था, जिससे उन्हें रातों रात प्रसिद्धि मिली है। तो सुनते हैं फिल्म देवदास से उनका यह गाना। हालिया चर्चित गानों में फिल्म सैयारा का यह गीत सैयारा रिप्राइज फीमेल वर्जन उनके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड सिंगर का पुरस्कार मिला था। तो और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए जया और अभिषेक को परिक्रमा कार्यक्रम यही समाप्त करने की। नमस्कार, नमस्कार।